आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे के पहले दिन कल शाम राजधानी भुवनेश्वर में राज्य भाजपा मुख्यालय में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी और ओडिशा में नवगठित भाजपा सरकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इससे 4,60,00,000 ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने सूरत जिले के विभिन्न टेक्सटाइल पार्कों का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने एक फैक्ट्री में सेना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैराशूट फैब्रिक, थर्मल प्रोटेक्शन जैकेट और मिलिट्री सेगमेंट यूनिट्स के निर्माण का भी अवलोकन किया। उन्होंने सूरत में भारत टेक्स 2025 के प्रमोशन के लिए एक रोड शो में भी भाग लिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि भारत अब दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। वे कल नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉ राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 में बोल रहे थे। व्याख्यान का विषय था वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही आकाशवाणी राष्ट्र की आवाज बन गई है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौर भी मौजूद थी। व्याख्यान के रिकॉर्डिंग 3 दिसंबर को डॉ राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर रात 9:30 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला वैश्विक एकता का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि महाकुंभ संस्कृति, कला और शिल्प के वैश्विक आदान प्रदान का अवसर है। उन्होंने कहा कि यह विविधता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि सरकार देश और दुनिया को महाकुंभ मेले के लिए सर्वोत्तम आवास, परिवहन और भ्रमण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को सशक्त बनाने के लिए 10 करोड़ रूपये देने का अपना आदेश कल वापस ले लिया। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने कहा कि यह कदम एक सरकारी प्रस्ताव जीआर जारी होने के एक दिन बाद उठाया गया है, जिसमें राज्य प्रशासन ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए के कोष के वितरण का आदेश दिया था। कांग्रेस कार्य समिति ने मौजूदा राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी ने दिसंबर में बेलगावी में महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की 100वीं वर्षगांठ मनाने का भी फैसला किया है। नेपाल की विदेश मंत्री डॉ आरजू राणा देवबा चीन के विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर चीन में हैं। डॉ राणा की यह पहली चीन यात्रा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगले सप्ताह चीन यात्रा की तैयारी के लिए डॉ राणा चीन के दौरे पर है। भारत G20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करता है। देश का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 17,76,000 टन है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सऊदी अरब उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले देशों में आते हैं। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, पीवी सिंधु और उन्नति हुडा सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। डबल्स में 5 भारतीय जोड़ियों ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।